निष्काम सेवा सत सेवा होई, कल्याण स्वरूप ये धर्म पिरोई, अर्थ छोड़ जो सेवा धारी, तिस जन को आए मिले मुरारी, सेवा करे से बुद्धि पर गासे, सत स्वरूप अंतर में भासे, सेवा करे से मन सुख छोड़े, निज सुख आत्म हृदय जोड़े, सेवा धर्म से काम ना जाए, तुच्छ जीवन से वैराग को पाए, मन की त्रिखा शांत तब होई, पर उपकार जब माल परोई, अपना सुख जो मन से त्यागे, सत सेवा में सोही जन लागे, कामना सहित जो सेवा होई, तिसमें धर्म की सार नहीं कोई, मन अपने को सोधिए, विच मार्ग पर उपकार, मंगत ये ही बंदगी, भव से करे निस्तार, मन अपने को सोधिए, विच मार्ग पर उपकार, मंगत ये ही बंदगी, भव से करे निस्तार।
निष्काम सेवा सत सेवा होई, कल्याण स्वरूप ये धर्म पिरोई। संसार में हम सब जानते हैं कि सेवा क्या होती है, परिवार में भी हम एक दूसरे की काफी सेवा करते हैं, माता पिता बच्चों का पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सोसाइटी में भी हम तरह तरह की सामाजिक सेवाएं करते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस सेवा के पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है, या यूं कहिए कि एक करुणा होती है, कि दूसरे का दुख हमको दिखाई पड़ता है तो हमारा मन करता है कि किसी प्रकार इसकी सहायता करके मैं इसका दुख दूर कर लूं। लेकिन जब सतमार्ग में सेवा की बात आती है तो वहां फिर इस प्रकार की सामाजिक सेवा करने की बात नहीं आती, उसके पीछे कुछ दूसरा लक्ष्य होता है। हर मनुष्य हम जानते हैं कि अपनी कामना से परेशान है, अपनी वासना से परेशान है, और इसी वासना से के वशीभूत होकर वो संसार में पाप करता है, गलतियां करता है, दूसरों को दुखी भी करता है। तो इस वासना रूप बीमारी से बचने के लिए या इस वासना रूपी बीमारी को खत्म करने के लिए सत्पुरुष सेवा की बात करते हैं। तो इसीलिए वो सेवा के पीछे सत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सत सेवा। तो सत सेवा भी कैसी, वो कहते हैं कि निष्काम सेवा सत सेवा होई, कल्याण स्वरूप ये धर्म पिरोई। वो सत सेवा भी तब कहलाती है जब वो निष्काम, उसके पीछे कोई भी किसी प्रकार की कामना ना हो। तो वास्तव में ये निष्काम जो सेवा है ये करना इतना आसान नहीं, ये एक स्थिति में पहुंचकर ही निष्काम सेवा हो पाती है, लेकिन उसका प्रारंभ करुणा से ही होता है। दूसरे का दुख देखकर मेरे मन में भी दुख पैदा होता है, इसको संवेदना कहते हैं। तो जब मेरे अंदर संवेदना पैदा होती है तब वास्तव में मैं सेवा सही रूप में करने में समर्थ हो पाता हूं। लेकिन जब मुझको ये पता लगता है सत्संग श्रवण करते करते, वाणी या शास्त्र पढ़ते पढ़ते, कि मेरा जो मन है इसकी जो उपस्थिति है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है, ये वासना के कारण ही है। मन के अंदर ही तीन प्रकार के स्वभाव हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। मन के अंदर ही हजारों प्रकार की कामनाएं हैं, मन के अंदर ही तृष्णा ईर्ष्या द्वेष सारे मन के अंदर ही हैं। तो इस मन की सफाई के लिए, इस मन को निर्मल करने के लिए मुझको सेवा सिखाई जाती है। इसीलिए जब तक उसके पीछे निष्कामता ना हो, संसार की कोई भी कामना उसके पीछे ना हो, तभी मन इन दोषों से मुक्त हो सकता है, इन संस्कारों से मुक्त हो सकता है, इस स्वभाव से मुक्त हो सकता है। मन जब स्वभाव से मुक्त होता है तब मन ईश्वर के साथ एक हो जाता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि निष्काम सेवा सत सेवा होई, कल्याण स्वरूप ये धर्म पिरोई। तब इस मन के अंदर कल्याण स्वरूप जो धर्म है वो इसमें वास करता है। तो कल्याण स्वरूप क्या है? कल्याण को ही मोक्ष कहते हैं, अर्थात संसार के बंधन से, संसार की बेचैनी से, संसार के कष्टों से या शारीरिक कष्टों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। आगे कहते हैं, अर्थ छोड़ जो सेवाधारी, तिस जन को आए मिले मुरारी। यहां अर्थ का मतलब ये नहीं है जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, पैसा कहते हैं। यहां अर्थ का मतलब है स्वार्थ। अर्थ छोड़ जो सेवाधारी, जो स्वार्थ को छोड़कर सेवा धारण करता है, तिस जन को आए मिले मुरारी, उसको इस देह के अंदर ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर का अनुभव हो जाता है। जो आनंद रूप है, जो शांति रूप है, जो मोक्ष रूप है। तो इसका मतलब हो गया कि सेवा और स्वार्थ, संसार में जीने के दो ही रास्ते हैं। या तो आपका जीवन सेवामय बन जाए या स्वार्थमय बन जाए। तो आम संसारी लोग हमको दिखाई पड़ते हैं, हमारे गृहस्थ जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पैसा कमाता है, इच्छा पूर्ति के लिए साधन इकट्ठे करता है, इच्छा पूर्ति के लिए परिवार बसाता है, इच्छा पूर्ति के लिए परिवार का पालन पोषण करता है, देश चलाता है, सब कुछ, सारा संसार जितना भी है उसकी जितनी भी क्रिया है वो इस अर्थ के लिए ही है, इस वासना पूर्ति के लिए ही है, स्वार्थ के लिए। लेकिन जो इस स्वार्थ को छोड़कर, इस स्वार्थ से मुक्त होने के लिए, वासना से मुक्त होने के लिए सेवा का नियम अपनाता है, सेवा का साधन अपनाता है, तो उसको क्या प्राप्ति होती है? जिस उद्देश्य के लिए वो ये नियम को अपना रहा है, उस उद्देश्य की उसकी पूर्ति हो जाती है, अर्थात तिस जन को आए मिले मुरारी। इस देह के अंदर जिस प्रकार मेरा मन मौजूद है, जिसमें वासना पल रही है, उसी प्रकार इस देह के अंदर मेरा ईश्वर भी है, जो निर्वास है, वही आनंद रूप है, वही शांति रूप है, वही मोक्ष रूप है। इसीलिए बाहर की क्रिया जो हमारी शारीरिक होती है, उसमें हमारा स्वार्थ होता है। धीरे धीरे करके इस स्वार्थ के जहर को हमने समझना होता है विवेक के द्वारा। जैसा कि वाणी कह रही है कि सांसारिक जीवन में जो बाहर की प्रकृति है और ये देह है, ये पांच तत्व से इसका निर्माण हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इनके पांच विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो आपका सारा जीवन, चाहे कितना भी अच्छा है, कितना भी बुरा है सामाजिक रूप से, वो पांच विकार के अंतर्गत ही है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए जब तक आप ईश्वर का मार्ग नहीं पकड़ते, आप लोगों की तुलना में तो अच्छे हो सकते हैं, समाज में बड़े लोग कहते हैं ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये बहुत बुरा आदमी है, तो सामाजिक दृष्टि से आप अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन आपका अच्छा जीवन भी विकारमय है, ये आपको पता नहीं होता। तो ये अध्यात्म विद्या ही आपको बताती है इस रहस्य को, कि समाज में अच्छा होना भी वास्तव में वो मनुष्य का पापी जीवन ही है। अंतर इतना ही है, जैसे कहते हैं कि अंधों में काने राजा, उसकी दो खूबी है, मेरी एक खूबी है। इसीलिए चाहे संसार में अच्छा आदमी है, चाहे बुरा आदमी है, बेचैन दोनों ही रहते हैं, बेचैनी से दोनों में से कोई मुक्त नहीं हो सकता। कम ज्यादा का अंतर तो हो सकता है, लेकिन मुक्त कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए तीसरा रास्ता है निष्काम होना, ईश्वर प्राप्ति करना, ईश्वर देह के अंदर उसका दर्शन करने की कोशिश करना। तो आगे कहते हैं, सेवा करे से बुद्धि परगा से सतस्वरूप अंतर में भासे। सेवा करने से बुद्धि के अंदर प्रकाश हो जाता है। ये कौन सा प्रकाश है? बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। बुद्धि किसे कहते हैं? जो निर्णय करती है। महाजी ने बुद्धि को जीव भी कहा। जब बुद्धि को हम जीव कहते हैं, तो वो जब जीव है तो वो जानता भी है और निर्णय भी करता है। चाहे हम उसको केवल बुद्धि कहें, चाहे उसको हम केवल जीव कहें। तो बुद्धि का प्रकाश क्या है? बुद्धि निर्णय भी कर रही है, बुद्धि जान भी रही है। जो सिमरन करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सिमरन में कौन बाधक बनता है। सिमरन में मेरा मन बाधक बनता है, उसके अंदर संसार के संकल्प उठते हैं, संसार की वासनाएं उठती हैं, उनकी तरंगे उठती हैं, काम याद आते हैं, परेशानियां याद आती हैं, और जो प्रभु का प्रेम से मैं याद करने बैठा था प्रभु की, उसमें बाधा पहुंचती है, उसकी मैं प्रेम से याद कर नहीं पाता। तो कहते हैं कि सेवा करने से बुद्धि के अंदर प्रकाश पैदा हो जाता है। तो प्रकाश कौन सा होता है? कि जो मलिन संस्कार वासना के, इच्छाओं के मन के अंदर पल रहे हैं, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। जितना जितना आपका स्वार्थ का जीवन होता है, वो वासना आधारित जीवन ही है, और जितना जितना परमार्थ का जीवन होता है, वो वासना से निवृत्ति का रास्ता है। इसीलिए जो व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के लिए सेवा को अपनाता है, उसकी सेवा में निष्कामता होती है। वो कि कामना पूर्ति के लिए सेवा नहीं करता, मन के मैल को धोने के लिए सेवा करता है, उसका लक्ष्य होता है। इसीलिए सेवा करते हुए भी, अर्थात देह से सांसारिक कर्म करते हुए भी, उसके अंदर प्रभु की याद बनी रहती है, उसको अपने लक्ष्य की याद बनी रहती है। इसीलिए वो अलर्ट रहता है, हर प्रकार की वासना से बचने की कोशिश करता है, और विवेक के द्वारा इस वासना को जहर समान समझता है। वो जानता है कि ईश्वर इस देह के अंदर मौजूद है, उसी प्रकार मौजूद है जिस प्रकार मेरा मन इस देह के अंदर मौजूद है। मन के कारण मैं परेशान रहता हूं, और प्रभु के कारण मैं आनंदित होता हूं, यदि अंदर प्रभु का कुछ वियोग हो सके तो। इसीलिए सेवा करे से बुद्धि प्रगा से सत स्वरूप अंतर में भासे। सत स्वरूप का अर्थात तो ईश्वर का अनुभव इस देह के अंदर उसको होने लगता है। तो बुद्धि में प्रकाश क्या हुआ, अर्थात बुद्धि मन के मैल से धीरे धीरे मुक्त होने लगती है। मन के अंदर स्वभाव पलता है ना, तो तमोगुणी स्वभाव रजोगुण में बदलता है, रजोगुणी स्वभाव सतोगुण में बदलता है। तो आपके कर्म शुद्ध होने लगते हैं, आपकी इच्छाएं शुद्ध होने लगती हैं, और जब निष्काम सेवा करते हैं तो धीरे धीरे मन के कारण जो बुद्धि बेचैन रहती थी, मन के कारण जो बुद्धि में चंचलता थी, वो धीरे धीरे बुद्धि स्थिर होने लगती है और प्रभु के साथ अंदर वो सिमरन में एक होने लगती है। उस बुद्धि को प्रभु का याद बड़े प्रेम से आती है, बड़े प्रेम से अंदर भजन करने में वो सफल हो जाता है। तब कहते हैं कि सेवा करे से मन सुख छोड़े, निज सुख आत्म हृदय जोड़े। इसका आगे क्या विकास होता है कि मन जो है संसारिक सुख को ही छोड़ने लगता है, उसकी संसारिक रुचि खाने पीने में पहनने में रुचि नहीं रहती। साधारण व्यक्ति देखिए कि पहनने में कितनी रुचि होती है, देखा देखिए कितने तरह के हम वस्त्र तैयार करते हैं, कितने तरह की हम कमाई करते हैं, कितने साजो सामान इकट्ठे करते हैं, तो इनमें हम सुख महसूस करते हैं, सुख का लक्ष्य बनाते हैं। और हमारी बुद्धि का निर्णय होता है कि जितने ज्यादा सुख भोग लूंगा उतना ही मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन बुद्धि के अंदर जब विवेक आ जाता है तो बुद्धि ये सोचने लगती है कि मन के अंदर जितने ज्यादा सुख भोग की इच्छा होगी उतनी ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कभी चैन का दिन मैं जीवन में देख ही नहीं पाऊंगा। उस बुद्धि का निर्णय ये होता है। इसलिए कि सेवा करने से क्या होता है, अर्थात कौन सी सेवा, निष्काम सेवा, कि मन सुख छोड़े, मन सुख को ही छोड़ने लगता है। घर में यदि सुख के अंबार भी भरे पड़े हों तो वो अपना सादगी से जीवन ही बसर करता है। आहार सादा, उसका वस्त्र सादा, जो खास जरूरतें होती हैं परिवार की, घर की, शरीर की, केवल उनको पूर्ति में उसका ध्यान रहता है, उनको बढ़ाने में उसका ध्यान नहीं रहता, उसमें रुचि नहीं रहती उसकी। तो इसीलिए फिर अगली स्थिति क्या आती है कि निज सुख आत्म हृदय जोड़े। तो ऐसा मन अंदर जो ईश्वर का सुख है, ईश्वर का आनंद है, ईश्वर की शांति है, ये मन उस शांति का रस लेने लगता है। जो मन बाहर आनंद ढूंढ रहा था, उसके लिए खोज कर रहा था, उसके लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां इकट्ठी कर रहा था, बड़े बड़े साजो सामान इकट्ठे कर रहा था, वही मन फिर सिमरन का आनंद लेने लगता है, ईश्वर के अनुभव का आनंद लेने लगता है। तो ऐसा मन फिर उसकी अंतर्गति होने लगती है, बहिर्गति उसकी बंद होने लगती है। इसीलिए वो मन फिर सादा हो जाता है, बाहर का जो जितना भी ये राजरंग है ये उसको छोड़ने की उसके अंदर इच्छा पैदा हो जाती है। सेवा धर्म से कामना जाए, तुच्छ जीवन से वैराग्य को। अगली स्थिति ये हो जाती है उसकी कि सेवा धर्म से कामना जाए। वो जानता है कि सेवा क्या होती है, कामना को खत्म करने का मार्ग है सेवा। तुच्छ जीवन से वैराग्य को पाए। तो जब बुद्धि इस मन की बेचैनी से, मन के बंधन से, तरह तरह की इच्छाओं से, मन की तृष्णा से बुद्धि जब आजाद होती है, तब बुद्धि के अंदर दूसरी चीज आ जाती है, उसका दूसरा निर्णय हो जाता है कि संसार दुख रूप है और ईश्वर आनंद रूप है। ये जीव का निर्णय हो जाता है जो शास ऑलरेडी कह रहे हैं, सुखिया कोई ना देखाया, जो आया इस संसार जो देखा सो दुखिया, नित दुख का करे विचार, तृष्णा लागी अग्नि रोए कुल संसार। ये वाणी कह रही है, और हमको ये बात समझ में नहीं आती, हमारे मन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बात, लेकिन वाणी ठीक कह रही है। जिस दिन बुद्धि में ये वासना का बुखार बुद्धि का उतरेगा, उस दिन ये बात समझ में आती है कि वास्तव में संसार में बेचैनी के अलावा है कुछ भी नहीं। और जिसका अंत जो है जीवन का मौत है, परम दुख। इसीलिए ये तुच्छ जीवन समझने लगता है, संसार का जीवन ये तुच्छ जीवन है। इसलिए उस बुद्धि के अंदर इस संसारिक जीवन के प्रति, संसारिक भोगों के प्रति वैराग्य पैदा हो जाता है, और वैराग्य जब पैदा होता है तभी उसके अंदर उसकी ये स्थिति होती है कि ईश्वर का अनुराग पैदा हो जाता है। ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, संसार से वैराग्य, प्रभु से अनुराग, ये धीरे धीरे उसका बढ़ता रहता है। मन की त्रिखा शांत तब होई, पर उपकार जब माल पर होई। तो धीरे धीरे उसकी मन की जो तृष्णा है, प्यास है भोगों की, ये शांत होने लगती है। और ये कब शांत होती है? जब उसके जीवन में सांसारिक दृष्टि से देखें या सांसारिक कर्म की दृष्टि से देखें तो उसका मन एक ही करता है कि मैं किसी का क्या दुख दूर कर सकता। उसको दूसरे के मन का दुख दिखाई पड़ने लगता है, देखता है कि हर व्यक्ति बेचैन है, ये चाहे विचार से, चाहे किसी की मदद से, तरह तरह का वो उपकार करता है और दूसरे का दुख अपनी सामर्थ्य के अंदर रहते हुए दूर करने की कोशिश करता है। उस व्यक्ति के अंदर वैराग्य भी है, प्रभु का अनुराग भी है, और जो संसार में भोगों की तृष्णा थी उसकी जगह उसके अंदर एक ही प्यास है कि ये शरीर किसी का दुख दूर करने में, किसी का उपकार करने में काम आ जाए, तब मेरा प्रभु खुश होगा मुझे। अपना सुख जो मन से त्यागी, सत्सेवा में सोही। अपना सुख जो मन से त्यागे, सत्सेवा में सोही जन लागे। याद रखिए, जो अपने सुख को मन से त्याग करने की कोशिश करता है, अर्थात संसार के भोगों में वो खुश होता ही नहीं है, उसका स्वभाव ऐसा बन जाता है, वो केवल प्रभु के अनुराग में और परोपकार में ही खुश होता है, उसको उसमें तसल्ली मिलती है। जैसा कि सारे सत्पुरुषों का हम जीवन देखते हैं कि वो जो भी सत्पुरुष संसार में आया है उसका जीवन परोपकारी ही होता है। कामना सहित जो सेवा होई, तिसमें धर्म की सार नहीं कोई। सारा संसार कामना धारण करके मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, गुरुद्वारों में जाता है, कोई ना कोई कामना रख के जाता है, ईश्वर से एक ही आशा करता है कि ईश्वर मेरा दुख दूर कर देगा, मेरा काम बना देगा। सारी दर्शन भेंट ये इसी वास्ते होती है। उसका निर्णय वाणी कर रही है कि कामना सहित जो सेवा हुई, तिसमें धर्म की सार नहीं कोई। धर्म उसको कहते हैं जो आपको ईश्वर से जोड़ता है। तो जब कामना पूर्ति के लिए ईश्वर याद आ रहा है तो ईश्वर से आपका दिल कैसे जुड़ सकता है? मन में कामना ही पलेगी आपके, और बुद्धि उस मन के वशीभूत होकर ईश्वर सिमरन में बार बार फेल होगी। इसलिए निष्काम जिसका मन होता है उसी की बुद्धि जो है ईश्वर के साथ अंदर एक होती है। तो अंतिम कह रहे हैं कि मन अपने को सो दिए, विच मार्ग पर उपकार, मंगत ये ही बंदगी, भव से करे निस्तार। इस भव सागर से छुटकारा पाना है और प्रभु का आनंद लेना है तो एक ही रास्ता है कि अपने मन का शोधन करना पड़ेगा, मन का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, मन को पवित्र करना पड़ेगा। और उसका रास्ता क्या है? विच मार्ग पर उपकार, कि दूसरे का कष्ट निवारण करने की कोशिश करें, दूसरे का दुख निवारण करने की कोशिश करें, तब जाकर ये मन जो है वो वासना रूपी जहर का धीरे धीरे त्याग करेगा, तब हमको जो अमृत रूपी प्रभु का रस है वो प्राप्त होगा और मेरा जीवन सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्य।